हरे राम
हरे
राम
राम हरे राम
राम हरे
राम
हरे।
राम हरे हरे।
तो आज 3 मार्च के संध्या जागृत में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। 5 मार्च को श्री गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन है। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री गौरांग महाप्रभु ये एक ही व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति नहीं है। श्री गौरांग का मतलब है जिनका वर्ण जो है वो गौर वर्ण है, और चैतन्य उनका सन्यास का नाम है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है ये सबको जानना जरूरी है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में हम जब पढ़ते हैं स्कूल में तो उसमें लिखा गया है कि चैतन्य महाप्रभु एक संत थे बंगाल में, जिनका जन्म हुआ था और वो हरि नाम का प्रचार करते थे और एक संत थे, ऐसा बताया गया है। लेकिन यही हमको समझना है। आम जनता के लिए लोग सोचते हैं कि वो संत हैं, लेकिन उनकी सही पहचान जो है वो क्या है, क्योंकि वो परम भगवान श्री कृष्ण है। तो ऐसा क्यों है, भगवान जब भगवान वृंदावन में आए तो सब लोग जानते हैं भगवान है, जब भगवान राम के रूप में आए थे अयोध्या में सब जानते थे कि भगवान है, तो ये भगवान होते हुए लोग जानते क्यों नहीं इसके लिए कि ये भगवान है। इसका कारण है क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा भगवान का अवतार है, ऐसे अवतार नहीं है वो, एक होता है अवतारी और एक होते हैं अवतार। अवतारी का मतलब होता है कि जिनसे अवतार निकलते हैं। बंद करो उसको। एक होता है अवतारी, तो श्री कृष्ण भगवान अवतारी पुरुष जो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके द्वारा अवतार निर्माण होते हैं, जैसे मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, श्री रामचंद्र जी, वामन देव, नरसिंह भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं कृष्ण अवतारी पुरुष हैं। लेकिन इसका विशेष कारण यह है कि भगवान भी सोचते हैं कि मेरे भक्त मुझ पर प्रेम करते हैं, और जो मुझ पर प्रेम करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, वो मुझको जितना आनंद मिलता है उससे अधिक आनंद का अनुभव करते हैं। घर में कैसा होता है, जब पति पत्नी शादी करते हैं वो पत्नी पति की सेवा करते हैं तो पत्नी को पति से भी अधिक आनंद मिलता है। सेवा लेने से ज़्यादा आनंद किस में होता है, सेवा देने में। आप में से जितने व्यक्ति दिल से सेवा करते हैं उनको भी दिल से खुशी मिलती है, ये रहस्य है, सब समझना जरूरी है। बहुत अधिकतर लोग भौतिक दुनिया में क्या करते हैं, कैसे लोगों से सेवा ले लें ये देखते रहते हैं, अधिक से अधिक सेवा हमको कैसे मिले, आपसे कैसे आपसे सेवा प्राप्त करें, इसको देखते रहते हैं। लेकिन सेवा लेने में खुशी नहीं होती, कभी सेवा देने में खुशी होती है। जो व्यक्ति हृदय से सेवा करता है वो सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त करता है। घर में भी अगर आप अपने पति की, अपने बच्चों की दिल से सेवा करेंगे तो उस सेवा में ही आपको आनंद आएगा, सामने वाला व्यक्ति भी प्रसन्नता को प्राप्त करेगा। आपका मरीज, जैसे हम बरसाने में देखते हैं सब लोग इतने भाव से सेवा करते हैं बरसाने में, हमारे एम्प्लॉय वहां पहुंचते हैं और वो सेवा करने में उनको इतना आनंद आता है कि बार बार सोचते हैं प्रभु जी हमको ले जाओ, वहां ले जाओ, हमको वहां ले जाओ। वहां पर दिन रात 12 घंटा सेवा करते हैं, यहाँ पर 8 घंटा सेवा करते हैं, लेकिन बरसाने में लोग 12 घंटा सेवा करते हैं और कुछ लोग 15 घंटा भी करते हैं, क्योंकि 12 घंटे वाले को और 12 घंटे वाला शिफ्ट होता है, तो दूसरे लोग आते हैं 12 घंटा करने के लिए। लेकिन कुछ लोग अकेले होते हैं, उनके लिए कोई बदली नहीं होता है उधर, तो उनको 24 आवर्स ऑन कॉल रहना पड़ता है। दिन में 3-4-5 घंटा सोते हैं खाली, बस कभी कभी बैठे बैठे सोते हैं, ऑन कॉल रहते हैं। लेकिन आप उनको पूछो प्रभु जी कैसा लगा आपको, नहीं प्रभु जी बहुत बोर हो गया, पता नहीं कितना काम करके लेते हैं, ऐसा नहीं। किसी से बात करो आप बोलेंगे प्रभु जी इतना आनंद आया, पता नहीं क्या होता है उधर बम्बे में आके 8 घंटे में थक जाते हैं, वहां पर 12-15 घंटे में थकते नहीं। गुरुदेव हमारे एक बार बरसाने में आए थे, वो कह रहे थे एक प्रवचन में कि दास बनना यानी सबसे श्रेष्ठ पदवी है जीवन की। हम लोग सोचते हैं दास बनना मतलब एकदम घटिया काम है, मालिक बनना चाहिए, मैनेजर बनना चाहिए, डायरेक्टर बनना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री हो या डायरेक्टर हो, बिना सेवा के, प्रॉमिस के बिना कोई नहीं बन सकता है। प्रधानमंत्री को भी सेवा करनी पड़ती है देश की, जैसे घर के आदमी को घर की परिवार की सेवा करनी पड़ती है, मुख्यमंत्री को राज्य की सेवा करनी पड़ती है। सेवा से कोई मुक्त नहीं। यहां पर भगवान भी स्वयं अपने भक्त का सेवक बनना चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं सेवक बनना मतलब बहुत घटिया काम है, लेकिन सेवक बनना ये बहुत उच्च कोटि का पद है। सही भावना से करेंगे तो, कोई लाभ के हेतु से करेंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके प्रति निस्वार्थ भाव से उसको प्रसन्न करने के लिए सेवा करेंगे, तो जिसकी सेवा आप कर रहे हैं उससे भी ज्यादा आनंद सेवा करने वाले को होता है। और यही जो तत्व है ये समझाने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। बाकी सारे अवतार भगवान के रूप में आते हो, इतने बच्चे के रूप में 7 दिन गोवर्धन को उठाते है ना, ये बच्चे के रूप में भगवान रामचंद्र ताड़का और सुबाहु का वध कर देते हैं। अकेले कृष्ण कितने युद्ध लड़े हैं, अकेले कृष्ण और 23 अक्षौणी सन्यासी, मतलब 85 करोड़ सैन्य था, अकेले कृष्ण ने मार डाला उनको। प्रभु रामचंद्र ने अकेले ने 45 मिनट के अंदर 14,000 बहुत खूंखार राक्षसों को मार दिया दंडक वन में, नासिक में, खर दूषण और त्रिशिर और उसके 14,000 सैनिकों को 45 मिनट के अंदर खत्म कर दिया उन्होंने। मतलब दिखाया कि मैं भगवान हूं, मैं पावर दिखाया उन्होंने। लेकिन ये अवतार बहुत अलग सा अवतार है। पहले तो नंबर वन का ये इसका अर्थ ये है कि ये छुपा हुआ अवतार है, इसका नाम कहते हैं छन्न अवतार। छन्न मतलब जो आम जनता से छुपा हुआ है, उसको पता नहीं कि ये भगवान है। इसलिए इतिहास की किताब में लिखा है कि ये एक बंगाल के संत थे, क्योंकि भगवान ने स्वयं नहीं चाहा था कि ये जनता को पता चले कि मैं भगवान हूं, क्योंकि वो गुप्त रूप में आकर एक भक्त बनकर भगवान की सेवा करना चाहते थे, मतलब स्वयं की सेवा, खुद की सेवा। और ऐसे क्या चीज है मुझमें जो लोग देखते हैं, जिससे आकर्षित होते हैं, और ऐसी क्या चीज है जो मेरी सेवा करने से उनको इतना अद्भुत आनंद प्राप्त होता है, मुझे ये पता करना है। भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ चीज ज्ञान उनकी तरफ से आता है, लेकिन वही भगवान ये नहीं जानते कि उनकी सेवा करने पर उसके सेवक को क्या आनंद मिलता है। इसलिए वो भक्त बनकर आते हैं स्वयं, कि वो मुझे आनंद, मैं देख रहा हूं कि राधा रानी गोपी और मेरे बाल बाल और सब कुछ मेरे मित्र जो हैं वो मेरी सेवा करते हैं और मुझसे भी अधिक आनंद प्राप्त करते हैं मुझको सेवा देकर, तो मुझे वो आनंद चाहिए, क्योंकि एक भक्त का आनंद भगवान के आनंद से बढ़कर होता है। ये हम सबको पता होना चाहिए, जितने लोग भक्ति वेदांत में काम करते हैं, सेवा करने का वाला करने वाले का जो आनंद है वो जिसकी सेवा कर रहा है उससे भी अधिक आनंद होता है, क्योंकि सेवा लेने से भी खुशी होती है कि चार लोग सेवा कर रहे हैं, एक हाथ दबा रहे, एक पाँव दबा रहे, एक खाना खिला रहे हैं, एक पानी लेके आ रहे हैं, एक सामान लेके जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि भाई इतने लोग सेवा कर रहे हैं। लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा आनंद जो है वो सेवा करने में होता है। और सेवा के भी कई अंग होते हैं। हम लोग सेवा किसी हेतु से कर सकते हैं, कि भाई सेवा नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा, डर के मारे कर सकते हैं, है ना, ड्यूटी पर नहीं आए तो अभी एबसेंट होगा, पगार कट जाएगा, डर लगता है, नहीं नहीं टाइम पे जाना चाहिए। एक होता है भय, भय के द्वारा सेवा करते हैं हम, वो सबसे घटिया सेवा मानी गई है, जो डर के करते हैं। पति को खाना नहीं खिला तो वो मारेगा मुझे, वो डर के मारे खाना बनाती है, ये एक सबसे लो लेवल की सेवा है। दूसरा सेवा इस प्रकार से होती है कि मुझे कुछ लाभ मिलेगा, सेवा करने से पगार मिलेगा, बख्शीश मिलेगा, कुछ और प्राप्ति होगी मेरे लिए, मेरी इंक्रीमेंट होगी, मेरी पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा, या पापा मुझे थैंक यू बोलेंगे, आके फाट पे थपथपाएंगे, मेरा सत्कार होगा, मेरे को बख्शीश अवार्ड सबके सामने बुलाकर थैंक यू किया जाएगा मेरे सेवा के लिए। होता है ना अपने हॉस्पिटल में बेस्ट नर्स अवार्ड, बेस्ट हाउसकीपिंग अवार्ड वो एक मन में हेतु होता है, हेतु कि लाभ लाभ होना चाहिए कुछ, वो नंबर 2 मतलब नंबर 3 की हो गए। नंबर 4 की कौन सी, डर के मारे। नंबर 3 कुछ मिलेगा इस भावना से। और नंबर 2 का क्या होता है कि मेरा ड्यूटी है, मैं करूंगा इसको। तो नंबर 2 की सेवा होती है कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे मेरे सासों पर प्रेम नहीं है, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इस घर की बहू हूं, मेरे सासू को देखभाल करना मेरा कर्तव्य है, इससे मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी कुछ नहीं मिलेगी, मेरा परिवार का ट्रेनिंग है मुझे कि ये होना है। ये बच्चा जो है वो मेरे बहन का है, मेरे बहन गुजर चुकी है, उसका बच्चा मेरे पास आया है, इतना मेरा प्रेम नहीं है उसके ऊपर मेरे बच्चे इतना, लेकिन मेरा ड्यूटी है, मैंने प्रॉमिस किया था उसको कि तू जाएगी तो मेरे बच्चे का, तेरे बच्चे का देखभाल मैं करूंगी। ऐसे कई कर्तव्य होते हैं हमारे। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने सासू और बहू का दिया, जिसमें इतना प्रेम नहीं होता लेकिन फिर भी वो ड्यूटी करके अपने, मैंने इस व्यक्ति से शादी किया है, इसकी मम्मी का सेवा करना मेरा कर्तव्य है। ये नंबर दो का बताया गया है कर्तव्य के भाव में। लेकिन नंबर वन मालूम है क्या बताया, किसको पता है नंबर वन क्या है? यस प्रभु जी, नंबर वन पर्पज ऑफ सेवा बताइए, बेस्ट पर्पज ऑफ सेवा क्या है बताइए? मालिक को जो चाहिए जिस प्रकार से चाहिए वैसे करना, उनकी खुशी प्राप्त हो इस भावना से, इसका मतलब है प्रेम। जिसकी सेवा कर रहे हैं उस पर आपका प्रेम है, इसलिए आप प्रेम की वजह से करते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? बच्चा और माँ। देखो बच्चे की जब माँ सेवा करती है तो उसको तनख्वाह नहीं मिलती है, या डर नहीं है कि नहीं सेवा करेगी तो बहुत ही मुझे मारेंगे या मैं जेल में जाऊंगी, डर भी कोई नहीं है। कोई लाभ है क्या 24 घंटे सेवा करती हो? कोई ओवर टाइम मिलता है क्या उसको? छुट्टी मिलती है कभी? कैजुअल लीव, अर्न लीव, छुट्टी, गांव जाने के लिए छुट्टी, रात को छुट्टी, केवल 8 घंटा दिन में, ऐसा होता है कभी? दिन रात सेवा करते, जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता तब तक सेवा करते रहते हैं उसके, और कभी सोचते नहीं कि मेरे को पति से अभी बच्चा हो गया ना, मेरा अभी पगार बढ़ाना चाहिए, जितना खर्चे को देते उतना 3 गुना देना चाहिए। पहले रात को सोती थी मैं, अभी रात को जगती हूँ, पगार बढ़ाना चाहिए, खर्चे के लिए मिलता ना महीने से पति के पास से, कोई हेतु नहीं होता है उसका। केवल बालक मेरा है, मेरा प्रिय बालक है, मैं उससे प्रेम करती हूँ, इसके लिए माता जो है खुद का खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ के दिन रात उसके पीछे सेवा करती है। ऐसा नहीं बोलती क्या रे किटकिट है ये, रात को सोने को नहीं, खाना खाने को नहीं, कपड़ा धोने को नहीं, बाल बनाने को नहीं, कुछ नहीं, कितना दिन से मैं मेकअप नहीं किया, क्या है, क्या चल क्या रहा है, ऐसा मैं सोचती भी नहीं कभी। दिन दिन रात तक कभी बुखार आता है बच्चे को तो 8-8 दिन वो सोती नहीं है, फिर कभी किसी को बोलेगी नहीं क्या बच्चा किटकिट है ये, बस हो गया अभी और मेरे को माता बनने की इच्छा नहीं, ऐसा नहीं बोलती। प्रेम इतना चीज होता है ना, प्रेम, प्रेम के लिए आदमी क्या नहीं करता है। तो प्रेम से की गई सेवा जो है वो सबसे बड़ी है, वो सेवक को मालिक से भी बड़ा कर देती है, सेवक जो है वो मालिक से भी महान हो जाता है। इसलिए ऐसा कहा गया है, समझो आपको भगवान और भक्त भगवान के साथ में मिलेंगे, कभी ऐसा मौका आएगा तो सोच लेना हाँ कि आपको दर्शन हुआ, एक भगवान का भक्त और भगवान साथ में आए आपके साथ में, तो किसके पांव छूना चाहिए आपको पहले, किसका प्रणाम करना चाहिए? हाँ भक्त के करना चाहिए, क्योंकि भगवान भी भक्त को पूजनीय मानते हैं। आप जानते हैं ना श्री कृष्ण भगवान ने जब धर्मराज का राजस्व यज्ञ हो रहा था तो क्या सेवा लिया था? परम भगवान श्री कृष्ण जब धर्मराज का अभिषेक होने वाला था, राज्याभिषेक इंद्रप्रस्थ राज्य में, तो भगवान ने क्या सेवा लिया था? साधुओं के चरण धोने का सेवा लिया था, और अपने पीताम्बर जो इतना महान, उनका गौरवशाली वस्त्र है वो, पूजनीय वस्त्र है उनका, पीताम्बर का कितना महात्म्य है, वो पीताम्बर से वो पांव पोछ रहे थे, जो भक्त है उनके उनके चरण कमल, जो भक्त उनको पूजते हैं वो भक्तों के चरण कमल ये धो रहे हैं और उनका छींटा अपने सर पे डाल रहे हैं। तो भगवान भी स्वयं अपने भक्तों की पूजा करते हैं, मत भक्ता पूजा वेदिका, वो कहते हैं मेरे दिल, मेरे को अगर आपको प्रसन्न करना है तो मेरे भक्तों की सेवा करो, मत भक्ता पूजा वेदिका। कई जगह शास्त्र में लिखा है कि अगर मुझे आपको प्राप्त करना है, मेरी मर्जी प्राप्त करनी है, मेरी कृपा प्राप्त करनी है तो मेरे भक्तों की सेवा करो। वे खुद देखो ना, खुद अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, है कि नहीं? सारथी बनने का मतलब क्या है? ड्राइवर बनना। वे आप ड्राइवर बनते हो मतलब क्या है? मालिक आएगा दरवाजा खोल के बैठो, गाड़ी साफ करेगा, उसको पेट्रोल भरेगा, हवा भरेगा, गाड़ी को ढंग से रखेगा, सब कुछ ठीक रखेगा गाड़ी में, पहले आके बैठेगा, वेट करेगा, मालिक मीटिंग में बैठा फिर भी वेट करेगा आराम से, तो वो जो काम है वो अपने भक्त के लिए भगवान ने स्वीकार किया। और कैसे होता है सारथी मालूम है आपको? हमने कभी सारथी को देखा ही नहीं, हमने तो खाली ड्राइवर को देखा है। उसको सुना ही पड़ता है अंदर क्लोज गाड़ी में, ए राइट लो लेफ्ट लो, आराम से बोलता है लेफ्ट लो, अभी सिग्नल पे लेफ्ट लेना। युद्ध के अंदर सब सारथी जाता है ना, तो बहुत वहां पर शोर रहता है, बहुत शोर कोलाहल, हाथी चील चिल्ला रहे हैं, घोड़े चिल्ला रहे हैं, मरने वाले आदमी चिल्ला रहे हैं, युद्ध करने वाले गर्जना कर रहे हैं, कोई शंख बजा रहा है, कोई घोषणा कर रहा है, कोई आह्वान दे रहा है, कोई चैलेंज दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, ऐसे बहुत होता है बोल बोल के मारा मारी, उसमें कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। तो उस समय पर अगर रथी, रथी मतलब जो बैठा हुआ है रथ में युद्ध कर रहा है, उसको अगर सारथी को बोलना है कि राइट में जाना है तेरे को, तो बोलने का कोई चांस ही नहीं है। तो वो पैर से, अपने पैर से सारथी के दाएं कंधे पर लात मारता है, सीधा ऐसा पैर उठा के लाइट राइट में लात मारेगा वो, तो सारथी समझ जाएगा कि राइट में जाना है। अगर बाद में कुछ राइट में जाएगा लेफ्ट में जाना है, तो लेफ्ट पैर से लेफ्ट जगह पर लात मारेगा वो कंधे पर, तो सारथी समझ जाएगा कि लेफ्ट में जाना है। अगर स्ट्रेट जाना है तो बीच में लात मारेगा, तो वो स्ट्रेट जाएगा। अभी जब मैं आपको बता रहा हूं कि अर्जुन के सारथी भगवान बने, इसका मतलब क्या हुआ? युद्ध में ऐसे अर्जुन ने कई बार उनको लात लगाई अपनी, जानबूझकर, इच्छा से नहीं, लेकिन वो अभी काम ही ऐसा है ना, काम ही ऐसा है। अभी क्या कर रहे हैं उसमें? भगवान को पता था पहले से कि सारथी बनने का मतलब क्या होता है, अर्जुन के घोड़े को थपथपाना पड़ेगा, अर्जुन के घोड़े को कभी मालिश करना पड़ेगा, पैर को थक गया तो कुछ आरा और पानी देना पड़ेगा, अर्जुन के रथ का जो पहिया है उस पर तेल देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर हवा भरते हैं पेट्रोल भरते हैं, वहाँ पर पहिए में तेल डालना पड़ता है, और घोड़े को अच्छी तरह से मालिश करना पड़ता है, मालिक को बोलना पड़ता है घोड़े थक गए बेटा रुको जरा, तो रेस्ट दो उनको, थपथपाना पड़ता है ऐसे ऐसे करके, उत्साह देके घोड़े से बात करके उसको फिर खड़ा करना पड़ता है। जब मालिक सो रहा है तो घोड़े को अच्छी तरह से रखना पड़ता है, नेक्स्ट डे वो काम पे आना चाहिए ना घोड़ा। सारथी बनना मतलब ये सारा करना, ये भगवान को पता था, लेकिन भगवान को अपने भक्त पर इतना प्रेम है कि भगवान ने कहा मैं सारथी बनूंगा आपका। कितने अपने भगवान कितने महान है। तो भगवान ये सारथी बनके क्या बता रहे हैं? अरे मैं मेरे भक्तों की खुद सेवा करता हूं, तुमको तो करना ही चाहिए, मेरे लिए पूजनीय है वो, मैं उसकी पूजा करता हूं, मैं उसकी भक्ति सेवा करता हूं उनकी, कि लात भी खाता हूं। तो भगवान ने स्वयं बताया है कि सेवा करने वाले का अधिकार सेवा जिसकी कर रहे हैं उससे ज्यादा होता है। अगर प्रधानमंत्री को आपको मिलना है और नहीं मिलने का अपॉइंटमेंट है आपको, लेकिन आप प्रधानमंत्री के वाइफ का आपका कॉन्टैक्ट है, और वाइफ उसको बोलेगी प्रभु जी इसको मिलना है आपको, तो मना कर सकता है वो? नहीं कर सकता है मना, वो मिलेगा उसको, क्योंकि वाइफ ने बोला है उसको मिलना है करके। हाँ, राधा और कृष्ण का भी ऐसा ही है, राधा और कृष्ण में भी राधा का अधिकार ज्यादा है कृष्ण से। जब राधा किसी को सिफारिश करती है कि ये भक्तों को कृपा करो, कृष्ण मना नहीं कर सकते उसको। तो अगर कृष्ण भगवान को पूछते रहोगे वो तुमको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, कोई कृपा नहीं मिल रही है, आप कोशिश करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा उसमें। लेकिन राधा रानी अगर बोलेगी बाय द चांस कि इस पर कृपा करो, तुरंत कृपा करेंगे वो। एक मोर था, मोर वो नंदगांव गया था, और बहुत उसने कृष्ण को पुकारा, गोपाल, गोविंद, कन्हैया, नंदलाल, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, बहुत रोया वो। फिर किसी ने बोला बरसाने जाओ, राधा रानी को पुकारो, तो बरसाने गया और राधा रानी को पूरा, तो रा और धा ये पूरा होने के पहले राधा रानी भाग के आई। बोला क्यों रो रहे तुम? बोला मैं नंदगांव गया था, बहुत रोया मैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बोला अच्छा, अभी दोबारा जाओ नंदगांव में और क्या बोलो, गोपाल बोलो, कन्हैया बोलो, नहीं नहीं अभी जाके राधे बोलो, राधे, वहां जाके नंदगांव में राधे राधे पुकारो, फिर देखो क्या होता है। तो वो नंदगांव गया मोर, और उसने राधे पुकारा, तो रा और धे पूरा होने के पहले भाग के आए कृष्ण और उसको गोद में लिया तुरंत। तो राधा रानी का नाम कौन कौन पुकार रहा है, जो मेरी प्रियतमा है राधा रानी, उसका नाम कौन पुकार रहा है, ये देखने के लिए भाग के आए, उसको गोद में लिया, बहुत प्रेम किया उससे, इतना प्रेम किया, इतना आनंद आया उसको, उसके पंख झड़ गए पूरे आनंद में, एकदम जैसे अपने बाल खड़े होते ना वैसे उसके पंख झड़ने लगे। तो भगवान ने वो प्रेम से गिरा हुआ पंख जो है उसको उठाया, अपने सर पे लगा दिया, और अभी भी उसको पहनते हैं वो। मतलब उनकी सबसे बड़ी भक्त राधा रानी है, और उनको भी आश्चर्य होता है कि ये राधा रानी का प्रेम क्या चीज है, इतना क्या चीज है जिसमें वो इतनी खुशी प्राप्त करती है, मेरी सेवा करती है लेकिन खुद इतना आनंद प्राप्त करती है। मैं देख रहा हूं कि मुझे जितना आनंद मिल रहा है उससे कई गुना आनंद इसको ज्यादा मिलता है। तो मैं एक बार इसका भाव जो है ना, भाव हृदय का भाव, मूड मूड जो है ना, वो लेकर एक बार मैं उतार लूंगा और देखूंगा कि ये राधा रानी जो है ना वो कैसा आनंद को प्राप्त करती है। ये समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, कृष्ण भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु बनकर आए। गौरांग मतलब गौर अंग, जिसका अंग जो है वो राधा रानी के जैसा है, राधा रानी का अंग गौर है, उसको गौरांगी कहते हैं, इसलिए कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में जाने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब आए तभी तो वृंदावन में एक पेड़ है, उसका नाम है इमली तला, वहां पर उन्होंने राधा रानी का ध्यान किया था बैठकर, जैसे हम लोग कैसे करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वैसे भागवत में लिखा है कि भगवान कृष्ण भी जप करते हैं, हम सब लोग उनके नाम का जप करते हैं। तो आप बोलेंगे फिर वो किसका नाम का जप करते हैं, वो राधा रानी के नाम का जप करते हैं। साफ साफ लिखा है कालिंदी तटे, कालिंदी यानी जमुना जी के किनारे में बैठकर वो राधा रानी के चरणों पर ध्यान करते, राधा रानी का नाम जपते, राधा 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 जपते रहते हैं हमेशा, वही उनका साधना है। तो आप समझ सकते हो ना कि जो सबसे बड़ा सेवक है उसका पोजीशन कितना इंपॉर्टेंट है। मालिक जब कोई आप बेस्ट सेवा करते हो ना, बेस्ट सेवा, तो मालिक भी आप पर डिपेंड हो जाता है कि वो नहीं आएगा छुट्टी पर है क्या, आज अभी काम कैसे होगा, उसके बिना काम नहीं होता है, मालिक भी डिपेंड हो जाता है। जब आपकी बीवी आपकी बहुत सुंदर सेवा करती है तो आपको पता ही नहीं आपका शर्ट पैंट आपका पेंसिल पेन उधर किधर रखा है, मालूम नहीं आपको, वो सब रखती है संभाल के। एक दिन बीमार पड़ गई तो हमको टॉवल नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है, शर्ट नहीं मिलता है, पता नहीं कौन सा पहनना है, वी डोंट नो एनीथिंग। डॉक्टर दलाल बताते हैं मुझे, लोग मुझे कहते हैं, डॉक्टर दलाल बता रहे थे कि हर आदमी मुझे बोलता है कि सर आप कितना अच्छा कपड़ा पहनते हो, आपका कितना फर्स्ट क्लास कपड़ा कॉम्बिनेशन पहनते हो। वो कहते हैं मैं नहीं कुछ करता, मेरी पत्नी मेरे को निकाल के देती रेडीमेड। और एक दिन ऐसा ही वो कुछ भी पहन के आए थे तो किसी ने बोला सर आज का कपड़ा आपका ठीक नहीं है, बोले हाँ मेरे बीवी बीमार है आज। तो जब कोई बेस्ट सेवा करता है तो जिसकी सेवा कर रहे हो वो व्यक्ति आप पर डिपेंड हो जाता है, वो आपकी सेवा का एक सर्टिफिकेट है, इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो आपके, वो व्यक्ति भी आपके ऊपर निर्भर हो गया अभी, व्हाट टू डू। तो वैसे राधा रानी है, ऐसे कहते हैं राधा रानी के बिना कृष्ण अधूरे हैं, राधा बिना कृष्ण आधा, ऐसे कहते हैं, पूरी तरह से निर्भर है उनके ऊपर। तो वो राधा रानी का एक बार चिंतन करते हुए वो बैठे थे उस पेड़ के नीचे, तो राधा जैसा हो गए, वो राधामय हो गई। तो राधा रानी ने पूछा ऐसा कैसे हो गया आपको आज, उन्होंने कहा आपके बारे में विचार कर रहा था, मैं मग्न हो गया था पूरा, आपका ही रूप धारण कर लिया मैंने। तो मैंने अभी तय कर लिया कि कुछ घंटों के लिए, कुछ क्षणों के लिए मैंने ये अनुभव किया आपका रूप लेकर, आपका भाव लेकर, तो इतना आनंद आया मुझे उसमें, इतना आनंद आया, तो मैं अभी एक अवतार लूंगा, अलग से एक अवतार लूंगा, अगले अवतार में आपका भाव लेकर मैं खुद आऊंगा और भक्त बनकर आऊंगा, आपके जैसा भक्त बनकर आऊंगा और आपके जैसे सेवा करने का प्रयास करूंगा, और आपके जैसे सेवा करने के बाद में क्या अनुभव होता है वो अनुभव करने का प्रयास करूंगा। तो राधा रानी बोली कि अरे जब तुम मेरा भाव लेकर आओगे ना तो फिर तुम बेहोश हो जाओगे, जगह जगह गिरोगे, रोओगे, हाँ पेड़ से गिर जाओगे, पानी में गिरोगे, जमीन पर गिरोगे, पत्थर पर गिरोगे, कांटों पर गिरोगे, जमीन पर लोटपोट हो जाओगे बेहोश होकर, तो कितना जख्म होगा तुमको, सगा जगह खून निकलेगा तुम्हारा। तो मैं तुम्हें मेरे त्वचा से ढक लूंगी, मतलब कांति मेरी जो है वो आपको कवर करूंगी, जैसे आप लोग ठंडी में ब्लैंकेट कवर करते हो ना बच्चे को, कपड़ा पहनते हो पर ब्लैंकेट भी डालते हो ठंडने लगे उसको, वैसे आप बेहोश होकर जब बार बार गिरेंगे नदी में, पानी में, पत्थर में, कंकड़ में, कांटों में गिरेंगे तो आपको जख्म नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं मेरा त्वचा जो है, त्वचा यानी कि कांति, उसको मैं आपसे कवर करूंगी। तो गौरांग प्रभु, मैंने पूरा पूछा आपको कौन है, वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन राधा रानी का भाव लेकर आए हैं और राधा रानी का त्वचा भी लेकर आए हैं, मतलब कलर भी लेके आए हैं। बाहर से राधा रानी की त्वचा है कांति, गोल्डन कलर, स्वर्ण कांति, हृदय में राधा रानी का भाव है, लेकिन है वो कृष्ण और भगवान बनकर नहीं आए। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझने की है, वो भगवान बनकर नहीं आए, भक्त बनकर आए। जैसे हम आप जब करते हैं ना हरे कृष्णा मंत्र का, वैसे चैतन्य महाप्रभु भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये खुद भी जप करते हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपने पूरे अवतार में ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन ही किया है और कुछ नहीं किया है। प्रचार बहुत कम किया है, कीर्तन ज्यादा किया है। कीर्तन करके ही लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिया है। उनका कीर्तन जिसने जिसने देखा वो सब भक्त बन गए। पापी 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 जितने लोग थे वो भी सब भक्त बन गए। उधर नवद्वीप धाम में आपको अभी ले जाने की मेरी योजना है। इस साल में अधिक महीना आएगा, हाँ इस साल में अधिक महीना आएगा, 16 जून से 15 जुलाई तक। और अधिक महीना बहुत विशेष होता है, अधिक महीने में बहुत पवित्र कार्य होते हैं, कोई पाप कर्म नहीं करते हैं और कोई शादी वादी भी नहीं होती उस समय, कोई विवाह नहीं होता है, कोई गृह प्रवेश नहीं होता है, कोई, क्योंकि वो महीना केवल 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 भक्ति के लिए ही समर्पित किया गया है। वो 13वां महीना है, वो पूर्ण 3 साल के बाद में एक बार आता है, इसलिए उस महीने में कोई दुनियादारी का काम नहीं होता है, मतलब शादी, दुकान खोलना, बिजनेस खोलना या कोई एंगेजमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल भगवान का अनुष्ठान होता है, भक्ति होती है, भजन होता है, यात्रा होती है, दान पुण्य होता है, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, जप करते हैं, भागवत सप्ताह करते हैं, दिन में 25 माला करने का व्रत लेते हैं, जमीन पर सोते हैं, मीठा नहीं खाते हैं, कोई भोग लेते नहीं है। नए नए शादी के लोग भी उनको अलग अलग कर देते हैं, मायके जाती है और पति के घर में, क्योंकि केवल भजन करना है, बस ओनली भजन। तो वो महीने में जगन्नाथपुरी, वृंदावन धाम, मायापुर धाम, द्वारका, श्रीरंगम की यात्रा करना बहुत महत्वपूर्ण है। नदी में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण है, कोई व्रत करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम ये विचार कर रहे हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में आप लोगों को 4 दिन मायापुर की यात्रा कर रहे हैं। सब लोग नोट कर लेना, हाँ 4 दिन के लिए हम लोग मायापुर जाएंगे और चैतन्य महाप्रभु का धाम का दर्शन करेंगे, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया। उनका ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर स्थान है, उसको कहते हैं योगपीठ। वो योगपीठ में उनका जन्म हुआ, वही योगपीठ वो जगह है जहाँ पर ब्रह्मा जी को स्वयं कृष्ण ने, तपस्या करने के बाद में कृष्ण भगवान ने उनको चैतन्य महाप्रभु का दर्शन दिया था और बताया था कि मैं अगले अवतार में इस रूप में आने वाला हूँ। अभी अवतार हुआ नहीं उनका, लेकिन ब्रह्मा जी को द्वापर युग में दिखा दिया उन्होंने रूप, और वो भी उसी जगह पर जहाँ पर उनका जन्म होने वाला था, क्योंकि बाय द चांस उन्होंने उसी जगह पर तपस्या किया था उनको माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि उन्होंने बछड़े चुराए थे ना, बछड़े कृष्ण के खेल खेल में। देखो कौन है भगवान है कि क्या, देखते हैं जरा, टेस्ट करके देखते हैं। सारे बछड़े और ग्वाल बालों को चुरा लिया था उन्होंने, गुफा में बंद कर दिया था। बाद में मालूम पड़ा कि अरे भगवान है ये, मैं तो बालक समझ के उनका टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन कितना अपराध किया मैंने, माफ़ी मांगा बहुत, लेकिन दिल नहीं भरा उनका माफ़ी मांगने के बाद। दोबारा अपने हंस में बैठकर जा रहे थे ब्रह्मा लोक, फिर जमीन पे उतर गए पृथ्वी पर, और फिर वही तपस्या किया जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु दर्शन दिया, वहीं पर महाप्रभु का जन्म हुआ, वहीं द्वापर युग में तपस्या किया उन्होंने। और भगवान ने उनको बताया कि मैं इसी रूप में आने वाला हूँ। कैसा? गौर वर्ण, स्वर्ण कांति, राधा रानी का भाव, और हरिनाम का प्रचार करूँगा, सब लोगों को हरिनाम दूंगा, कोई भेद नहीं करूंगा, जाति भेद, धर्म भेद, रंग भेद, भाषा भेद, देश भेद कुछ नहीं करूंगा। जो भी आएगा उसको भगवान का नाम दूंगा मैं, सबको प्रेम दे दूंगा भगवान का। गौलोक धाम से जो प्रेम है भगवान का वो मैं लेकर आया हूं, और हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से मैं सबको बांटूंगा, ऐसे उन्हें ब्रह्मा को ऑलरेडी बता दिया एडवांस में, और बताया कि तुम ब्रह्मा हरिदास ठाकुर बनकर आना, मुसलमान घर में जन्म लेना, और फिर भी तुम नाम प्रचार के आचार्य बनोगे, ऐसा वरदान दिया। तब ब्रह्मा जी का दिल शांत हो गया, बोले कम से कम कुछ सेवा दिया, हाँ ब्रह्मा का पद दिया तो मुझे बड़ा गर्व हो गया, मैं ब्रह्मा का पद लेकर भगवान को टेस्ट करने का प्रयास किया, ये अच्छा नहीं है। ब्रह्मा का पद लेकर फायदा क्या है, ब्रह्मा का पद प्राप्त करने के बाद भी इतनी मुझे अक्ल नहीं थी कि ये भगवान है, मैंने पहचाना नहीं उनको। इसलिए अभी मुझे अगले जन्म आप लोग जब लोगे तो मुझे कोई बड़ा पोजीशन मत देना, कोई बड़ा पद मत देना। तो भगवान ने कहा तुमको मैं एकदम छोटा जन्म दूंगा, लेकिन तुम्हें इतना छोटा जन्म देने के बाद भी नाम का आचार्य बनाऊंगा। तो वो ब्रह्मा जी फिर हरिदास ठाकुर बनकर आए। वो रोज 3 लाख जप करते थे। आप लोगों को आइडिया है क्या 3 लाख जप करने में टाइम कितना लगता है? एनीबडी नोज? 3 लाख जप करने में 24 घंटे लगते हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर वो 22 घंटे में करते थे। एकदम अभ्यास था ना उनको। हम लोगों को 1 घंटे में हम लोग 8 माला करते हैं, कोई कोई 9 भी कर लेता है, लेकिन 8 से 9 तो 20 घंटे में कितना हो गया? 180 माला। तो वो 192 माला करते थे रोज, 192 माला 108 मणियों की, 22 घंटा लगते थे। और बचे हुए 2 घंटा में स्नान भी करना है, टॉयलेट भी जाना है, भोजन भी करना है और विश्राम भी कर लेना है। 2 घंटा हो गया, फिर दूसरे दिन का माला चालू। मतलब 2 बजे सुबह माला खत्म हो गया, 2 से 4 के बीच में सोना भी है, स्नान भी करना है, ब्रश भी करना है, टॉयलेट भी जाना है, जो भी करना है। 4 बजे वापस जब माला शुरू, 0 0 से 0 0, फिर 1 2 3 4, फिर कभी 12 बजे के आसपास हो गया कुछ, 48 राउंड 50 राउंड, फिर उसके बाद में वापस 50, फिर 50। इतना जप करते थे वो, इतना आनंद था उनको उसके अंदर। भगवान के नाम के प्रचार में सर्वश्रेष्ठ आचार्य बने वो। वो कौन थे? ब्रह्मा थे वो। ऐसे महाप्रभु जी का अवतार है। महाप्रभु जी के अवतार में सब लोग आते हैं, प्रहलाद भी आते हैं, उनका नाम है वासुदेव दत्त। हनुमान जी आते हैं मुरारी गुप्ता बनकर, नारद मुनि आते हैं श्रीवास आचार्य बनकर, नंद महाराज आते हैं जगन्नाथ मिश्रा बनकर, यशोदा आती है सच्ची माता बनकर, बलराम जी आते हैं नित्यानंद प्रभु बनकर, साक्षात महाविष्णु जो कारण सागर में सोते रहते हैं, सोकर दुनिया का व्यवस्थापन करते हैं निद्रा में, योग निद्रा में। वो वहां का पोस्ट छोड़कर अद्वैत आचार्य बनकर आते हैं। राधा रानी स्वयं आते गदाधर पंडित बनकर। कौन नहीं आया बताओ? सब मुनि, सब ऋषि, सब देवता, सब लोग आ गए। पशु पक्षी झुरे पाषाणे विद्धारे सुन यार गुण गाथा। वो कहते इनकी लीला ऐसी है महाप्रभु की कि पक्षी और पशु होते ना वो भी सुनकर झुरते हैं। झुरते मतलब क्या? एकदम तरसते हैं उनके लिए। पाषाणे विद्धारे मतलब क्या? पत्थर है ना पत्थर, वो कभी पिघलता नहीं कभी, लेकिन उस पत्थर पे भी अगर एक एक बूंद आप बारिश का डालते रहेंगे ना रोज साल भर, तो उसमें भी छेद होता है, उसमें भी दाग पड़ता है और उसमें भी गड्ढा पड़ता है। तो बोलते ये पानी की धार नहीं है, ये महाप्रभु की कथा जो सुनता है ना, सुन यार गुण गाथा मतलब इनकी गुण गाथा जो सुनता है उससे पत्थर भी पिघल जाते हैं। इतनी शक्ति किस पर नहीं? आज हम सोना और लोहा को भी पिघला सकते हैं जलाकर, उसको मतलब अग्नि देकर उसका लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड लोहा बना सकते हैं, लिक्विड सोना बना सकते हैं। 3000 डिग्री में आप जलाएंगे ना उसको, गर्म करोगे तो वो लोहे का रस बनेगा, रो रस। लेकिन पत्थर को कोई पिघला नहीं सकता है। वो कहते हैं महाप्रभु जी का चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भगवान का चरित्र सुनकर पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो मैं तो इंसान हूं, मैं तो पत्थर नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूं कि मेरा हृदय अभी तक पिघला नहीं है। मतलब मेरा हृदय शायद पत्थर से भी कठिन होगा, इसलिए मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इतना पापी हूं मैं, ऐसा वो कवि लिखते हैं अपने भजन में। तो चैतन्य महाप्रभु वो भगवान के अवतार, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और लीला क्या करते हैं? केवल प्रेम लीला करते हैं, केवल प्रेम की लीला, और कोई ऐश्वर्य दिखाते नहीं, कोई पर्वत नहीं उठाया उन्होंने। लेकिन प्रेम इतना है, इतना प्रेम है कि उसकी छोटी कहानी बताता हूँ मैं। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत का भ्रमण करके जब जगन्नाथपुरी आए, तो सभी बंगाल के भक्त भी जगन्नाथपुरी में आए। तो उधर एक किंग था, राजा। हाँ सर, सुन रहे ना? राजा का नाम क्या था? राजा प्रताप रुद्र। और बृहस्पति भी अवतार लेकर आए थे। कौन थे वो? सार्वभौम भट्टाचार्य, वो राजा के राजगुरु थे। सब बड़े बड़े देवता लोग हैं ना, अपने अपने अवतार लेकर लीला में भाग लेने के लिए आए थे। तो बृहस्पति भी आए थे, उनके राजगुरु बनकर। तो बृहस्पति जो राजगुरु बनकर खड़े हैं छत छत पर राजा के साथ खड़े हैं, राजा पूछ रहा है ये कौन है जो बंगाल से आ रहे हैं, तो एक एक का परिचय दे रहे हैं कि ये परमानंदपुरी है, ये ब्रह्मानंदपुरी है, ये परा शिवानंद सेन है, सबका परिचय कर रहे हैं, उनका उनका ग्रुप आ रहे हैं और सबकी रहने की व्यवस्था राजा कर रहे थे, क्योंकि महाप्रभु ने तय किया था कि अब मैं जगन्नाथपुर में रहूंगा, तो महाप्रभु के रहने का व्यवस्था किया था, ठाकुर हरिदास का रहने का व्यवस्था किया था, सबके रहने का व्यवस्था किया रथ यात्रा के लिए। तो छत पे खड़ा रहकर देख रहे हैं कौन कौन आ रहे हैं बंगाल से, तब वो सब कीर्तन करते हुए आ रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सब कीर्तन करते हुए नाचते हुए झूमते हुए आ रहे थे। तो राजा कहता है अरे मैंने तो बचपन से जगन्नाथपुरी में इतना कीर्तन सुना है, मेरा घर ही भक्त के घर में हुआ था, उसके पिताजी का नाम था पुरुषोत्तम जेना, उसकी माताजी का नाम था पद्मावती, दोनों बहुत महान भक्त थे भगवान के, और उनके पुत्र के रूप में राजा प्रताप रुद्र का जन्म हुआ था। तो कहते जन्म ही जगन्नाथपुरी में हुआ, भक्त के घर में हुआ, तो और क्या चाहिए, जन्म से मैं भजन सुनते आ रहा हूँ, संतों का संग ले रहा हूँ, उनका कीर्तन भजन सुनते आ रहा हूँ, और सबका आनंद मैंने लिया है, लेकिन ये लोग भक्त जो कीर्तन कर रहे हैं उसका सुनकर आनंद कुछ अजीब है, बोलते ये कैसे हो सकता है ऐसे, क्या चमत्कार क्या है इसके अंदर, वही तो मंत्र है ये हरे कृष्ण मंत्र ये लोग गा रहे तो इतना खुशी क्यों हो रही है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं ये प्रेम कीर्तन है, ये केवल प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं। मतलब क्या होता है उसका, दुनिया के लोग कुछ लाभ का भाव से करते हैं कि मैं जब करूंगा तो मुझे प्रमोशन हो जाएगा, जब करूंगा तो शादी हो जाएगी, जब करेगा तो बच्चा हो जाएगा, लड़की की शादी हो जाएगी, हाँ जॉब मिलेगा मुझे, ऐसा बहुत सारा सोचते हैं लोग, अब मैंने गलत काम छोड़ दिया अभी मेरे को अच्छा होना है तो नौकरी मिलेगी वगैरह वगैरह। वो कहते हैं कि इनमें से किसी भी चीज का इनके मन के अंदर हेतु नहीं है कि हमको ये मिलेगा वो मिलेगा, ये भी उनका हेतु नहीं कि जप करने से कीर्तन करने से मेरा दुख कम हो जाएगा। अभी कम से कम जिसको बुखार आ रहा है, जिसकी पत्नी मर गई है, जिसका धन लूटा गया है, जिस घर में आग लगी है, भूकंप में घर नष्ट हो गया है, इतना सारा घटना होती है ना अपनी, तो हम चाहते हैं भगवान कम से कम इतना दुख मत दो, दुख इतना हो रहा है, दुख कम से कम कम हो जाए, कम से कम दुख कम करने के लिए हम सोचते हैं कि हमको भगवान का कीर्तन करना चाहिए। वो बोलते हैं कि ये लोग अपना दुख भी कम हो ऐसी भी अपेक्षा नहीं करते हैं, ये केवल प्रेम से भगवान का नाम का पुकारते हैं, केवल खुद के लिए नहीं, केवल जिसको पुकार रहे हैं उसकी खुशी के लिए पुकारते हैं, बस खाली अपने को कुछ लाभ मिले, दुख भी कम हो ये भी नहीं सोचते। इसलिए इस कीर्तन का नाम है प्रेम कीर्तन, जो केवल प्रेम के द्वारा कर रहे हैं, इसलिए ये निरपेक्ष कीर्तन है, इसमें कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए आपको इतना आनंद का अनुभव हो रहा है। वो कीर्तन प्रेम कीर्तन जो है वो प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, कि भगवान का भजन लोग बहुत काम के लिए करते हैं, अलग अलग हेतु के लिए करते हैं, लेकिन कोई हेतु न रखते हुए निर्हेतु अहैतुकी निरपेक्ष कैसा भगवान का भजन करना चाहिए ये स्वयं दिखाने के लिए भगवान आए थे। भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए ये भगवान से अधिक अच्छा कौन दिखा सकता है हमको, कि भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान के अधिक अच्छा कौन समझा सकता। अभी आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा ना मुझे क्या आप खिलाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं ही बताऊंगा ना आपको, आपको लगेगा कि इनको शायद बैंगन अच्छा लगता होगा, लेकिन मेरे को बैंगन अच्छा लगता नहीं, मेरे को कॉलीफ्लावर अच्छा लगता है, ये आपको कैसा मालूम पड़ेगा जब तक मैं बताऊंगा नहीं। तो जिसको प्रसन्न करना है वही बता सकता है कि कैसे मुझे प्रसन्न कर सकते हो, तो इसलिए वो स्वयं भक्त बनकर आए और भक्त बनकर लोगों को दिखाया कि भगवान को कैसे संतुष्ट करना है। ये चैतन्य महाप्रभु के स्थान में हम जाने वाले हैं, तो जिस जगह पर ब्रह्मा को दर्शन दिया उधर ही नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ, और तुम्हारे हमारा जैसा नहीं हुआ, माता की योनि से, माता के गर्भ में थे वो, सीधे बाहर प्रकट हो गए नीम के पेड़ के नीचे, इसलिए उनका नाम क्या रखा, निमाई, निमाई पंडित, बाद में पंडित बने तो निमाई पंडित हो गए, लेकिन नाम रखा निमाई, क्योंकि नीम के नीचे जन्म होने के बाद में सारी अशुभता दूर हो जाती है, नीम का पेड़ होता है ना वो सारे भूत प्रेत को भगा देता है पूरा, और किसी को भय अगर है, कोई चिंता है, तो उसका नाम निमाय रखते हैं, क्योंकि निमाय नाम रखने से, नीम का नाम लेने से भी भूत भाग जाते हैं। इसलिए जब 9 बच्चे पहले हुए थे उनकी माता को, 9 कन्या हुई थी, एक के बाद सब मर गई, तो उनको चिंता थी ये बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा, जैसे उसका नाम निमाय रखा, और फिर लालन पालन किया उस घर पे, बहुत सुंदर सुंदर लीला हुई। अभी जन्म की लीला ऐसी है कि जब इनका जन्म हुआ तो उस दिन चंद्र ग्रहण था। समझो आपका बच्चे का जन्म चंद्र ग्रहण को होता तो आप क्या सोचोगे, अरे क्या यही टाइम था उसके जन्म लेने का, इतना अशुभ घड़ी, सब सब लोग जब कर रहे हैं, सब लोग इधर नदी में स्नान कर रहे हैं, कोई स्नान घर के बाहर नहीं निकल रहा, आकाश में देख रहा नहीं। हम लोग ग्रहण को अपवित्र मानते हैं ना, कोई खाते पीते नहीं है कुछ, सब लोग खाना पीना फेंक देते हैं उस दिन, पानी में तुलसी ला के रखते हैं। तो अभी इतना जगन्नाथ मिश्रा का बालक जन्म हुआ तो कभी हुआ चंद्र ग्रहण के दिन, तब बोलेंगे इतना अशुभ घड़ी में भगवान ने जन्म क्यों लिया। नहीं, भगवान जो भी करते हैं ना बहुत सोच समझ के करते हैं। उस चंद्र ग्रहण के दिन फाल्गुन शुद्ध पूर्णिमा, आज कौन सी तिथि है, त्रयोदशी, कल है चतुर्दशी और परसों है पूर्णिमा, उस दिन अभी ग्रहण कब लगता है, या तो पूर्णिमा से अमावस्या को लगता है, तो ये ग्रहण था उस दिन चंद्र ग्रहण। तो सारा नवद्वीप धाम जितने भी लोग थे ना वो सब नदी में थे उस समय, वो समय पे सब लोग नदी में गंगा नदी में अपने आप को डुबा कर अंदर हाथ रखकर जप कर रहे हैं भगवान के नाम का, ताकि ग्रहण का बुरा परिणाम हमारे पर ना हो। सब लोग नाम पे लगे हुए हैं, यहाँ तक कि मुसलमान पापी दारू पीने वाले म्लेच्छ यवन सब लोग नदी में बैठे हुए हैं। और जो लोग हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं करते हैं वो करने वालों को चिढ़ाते हुए खड़े हैं वहां पर, मतलब वो भी जप कर रहे हैं, है ना। आप सब लोग नदी में खड़े हो, मैं नहीं करता, मैं आपको चिढ़ा रहा हूँ, ए हरे कृष्ण हरे कृष्ण, मैं भी बोल रहा हूँ आप भी बोल रहे हैं। इस तरह से सभी जनता, जितनी भी जनता है, भक्त है नहीं भक्त है, पापी है पुण्यवान है, सभी लोग उस समय भगवान का नाम का जप कर रहे थे। और सारा समय, सारा शहर गांव जितना भी देश भरा हुआ है सब भगवान के नाम से गूंज रहा था। तो जन्म से ही भगवान ने दिखा दिया कि मैं इसी के लिए आया हूं। जन्म से अभी इतना सा बालक है वो, नीम के पेड़ का जन्म उसका हुआ, लेकिन उसके जन्म के समय पूरी जनता दुनिया की भगवान के नाम का जप कर रही है। तो उनने उसी समय दिखा दिया कि मेरा अवतार किस लिए हुआ है। उसके बाद में जब थोड़े से बड़े हो गए तो जब रोते थे तो केवल हरे कृष्णा महामंत्र का जप सुनकर ही शांत होते थे। तो ये लीला ही शुरू हो गई उधर। वो रोते थे तो सबकी औरतें आती थी और हरे कृष्ण का मंत्र का जप करती थी, तब ये बालक हंसता था। फिर जब कीर्तन बंद करते थे फिर रोता था, तो फिर रोएगा तो फिर हरे कृष्ण मंत्र। इस तरह से सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा के घर में निमाई बालक जब जन्म लिया तभी 24 घंटा कीर्तन ही होता था, क्योंकि बालक बहुत होशियार था, जैसे कीर्तन बंद रोना चालू, रोते ही भगवान का कीर्तन शुरू रोना बंद। इस तरह सभी औरतों को सभी पड़ोसियों को सबको इसने बचपन से ही हरे कृष्ण मंत्र के जप करने में लगाया। एक बार सांप आया तो बालक भागा और सांप पे जाके बैठ गया, सांप भी गोल गोल हो गया, ऐसा एक अच्छा कुर्सी बनाया सांप ने अपने गोल होकर, उसके बीच में जाके बालक सो गया। सब लोग टेंशन में आ गए, अरे बाप रे सांप काट लिया तो, लेकिन पास जाएगा कौन, सांप को डिस्टर्ब करेंगे, सांप काट सकता है। सब दूर से खड़े होकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे पुकार रहे हैं। कुछ देर बाद में बालक उठ गया, सांप भी चला गया। तो सांप कौन था, अनंत नाग था वो, अनंत शेष। वो भी सोच रहा है अरे मेरे ठाकुर जी तो छोड़ के चले गए नीचे लीला करने के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर। वो खुद भी नीचे सांप बन के आया, उसको देख के भगवान ने पहचाना कि ये तुम्हारा शेष नाग है, जाओ उस पर थोड़ा सा सेवा देता हूँ उसको। तो सांप आया और आराम से गोल गोल हो गया, उसने मस्त बिस्तर बना दिया, बालक गया सो गया उसके ऊपर। ऐसी अद्भुत लीला करते भगवान वहां पर, ऐसी अद्भुत लीला करते। तो उस जगह आपको लेके जाएंगे, उस जगह में बहुत कुछ चीजें हुई हैं, बहुत बहुत सुंदर सुंदर लीला हुआ है भगवान का। ऐसे भगवान के बड़े अद्भुत भक्त थे, और सारे अद्भुत भक्त जो राम के भक्त थे, हनुमान जी वो भी आए, जो नरसिंह भगवान के भक्त प्रहलाद वो भी आ गए, जितने जितने अवतार भगवान के हुए सारे भक्तों के जितने भक्त थे अवतार के, वो सभी इस अवतार में भगवान की सेवा करने के लिए अलग अलग रूप धारण करके आए। ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ है, प्रभु रामचंद्र का जब अवतार होता है तो केवल प्रभु रामचंद्र के भक्ति अवतार लेते साथ में लीला करने के लिए। जब नरसिंह भगवान आते हैं तो प्रहलाद जैसे भक्त लोग वहां पर अवतार लेते हैं, जब कृष्ण आते हैं तो कृष्ण के सखा लोग ही वह अवतार लेते हैं। लेकिन गौरांग महाप्रभु के अवतार के समय कृष्ण राम नरसिंह वामन मत्स्य कुर्म वराह सभी परशुराम सभी के भक्त लोग अवतार लेते हैं। ऐसा ही अनोखा भगवान है। इनकी लीला भी इसे कहा ना कि पशु पक्षी झूरे पाषाणे विद्धारे सुन यार गुण गाथा। इनका कथा सुनकर तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, पशु पक्षी भी झूर जाते हैं। तो आइए हम सब लोग गौरांग महाप्रभु का उत्सव मनाएं बहुत सुंदरता से, ताकि हम भी जो धन को ये बांटने को आए हैं वो हम स्वीकार कर सके। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में आप लोग काम कर रहे हो लेकिन आपको गौरांग महाप्रभु का परिचय यहीं पर हो रहा है, बाहर किधर भी इनका परिचय नहीं है, लोग जानते नहीं है वो कौन है। लेकिन हमारा भाग्य है प्रभुपाद जी ने हमको समझाया है सब चीज़ को, ये कौन है, इनका हमारे लिए भेंट क्या है, गिफ्ट क्या दिया उन्होंने। उन्हें सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, वो क्या दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा कैसा कीर्तन होता है, ठंडा। उनका कीर्तन कैसा होता है, प्रेम कीर्तन। सब लोग बड़े प्रेम से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।